यार देखा तुमने कितनी अच्छी फीलिंग है ना। रौनक प्रेग्नेंट है, उसको देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने का दिल करता है। और मेरा देखो, मैं डाइट के चक्कर में कुछ खा ही नहीं पाती। काश मैं भी प्रेग्नेंट होती और मैं भी इसी तरह के अच्छे अच्छे डिशेस खा पाती। जैसी राधिका ने वंशिका से ये कहा, वंशिका घूर कर राधिका को देखने लगी थी और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली थी, सीरियसली राधिका जी, आप सिर्फ इसलिए प्रेग्नेंट हो जाती हैं क्योंकि आप अच्छे अच्छे खाना खाना चाहती हैं। तब राधिका ने बच्चों की तरह फेस बनाकर अपनी गर्दन हिला दी। वंशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। वंशिका को हंसते हुए देखकर रौनक बोली थी, क्या हुआ वंशिका, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? तब राधिका वाली बात वंशिका ने रौनक को बता दी थी। रौनक भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी हंस पड़ी थी। फिर बोली, सीरियसली तुम्हें पता है, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे ऐसा लगने लगा है कि कितना सारा खाना मेरे अंदर चला जाता है। लेकिन जब भी मैं रात को सोती हूँ ना, मैं सो ही नहीं पाती। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। इतना ही नहीं, मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा फुलफुल सा रहता है। वो तो आहान बेचारा है जो रात भर मेरे पैरों की मसाज करता रहता है। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, राधिका ने मन ही मन सोचा कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो सुमित भी उसकी इसी तरह से केयर किया करेगा। फिलहाल रौनक ने वसुंधरा को कभी कुछ खाने की फरमाइश कर करके पूरी तरह से थका डाला था। और वहीं वीर को तो रौनक, वंशिका और राधिका तीनों ने मिलकर एक रामू काका टाइप बना दिया था। उससे वो जो भी बाहर का खाना होता था ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय वीर से मंगवाना पसंद कर रहे थे। कहीं ना कहीं वीर की शक्ल देखने लायक हुआ करती थी। जब भी रौनक, वंशिका, राधिका को कुछ भी बाहर का खाने का मन हुआ करता, वीर उन्हें लाकर दे देता। लेकिन इन तीनों के लिए काम करके उसे अलग ही तरह की खुशी मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी प्रेमिका के लिए इस तरह से कोई सामान खरीद रहा हो। वो इसी बात से खुद को समझकर तीनों के लिए काम करता था। वहीं रौनक और राधिका ये सोचा करती थीं कि शायद वीर को बुरा लग रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वीर उनके बारे में क्या सोच रहा है। फिलहाल अब नानी माँ ने जल्दी ही एक बढ़िया सी डिश बना दी और फटाफट से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। वहीं चौंक गई रौनक, वो तुरंत नानी माँ के पास गई और बोली, ये क्या नानी माँ, आपने इतनी जल्दी खाना टेबल पर क्यों लगा दिया है? क्या हुआ है और इतनी जल्दी किसको भूख लगी है? मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं तो वैसे भी हर थोड़ी देर में वसुंधरा आंटी से कुछ ना कुछ बनवा कर खाई रही हूँ। अब ये सुनकर नानी माँ मुस्कुरा दी और बोली, शायद आप भूल रही हैं रौनक बिटिया, इस घर में एक और बिटिया है जो माँ बनने वाली है। आज उसका कुछ अलग चीज़ खाने का मन था, कुछ खट्टा मीठा, बस हमने उसके लिए वही बनाया है। अब ये सुनकर रौनक पूरी तरह से हैरान हो गई और बोली, क्या ऐसी भी कोई डिश होती है जो खट्टी मीठी बनती है? नानी माँ बोली, हाँ, जैसे कद्दू की सब्जी नहीं होती जिसे हम खट्टा भी खा सकते हैं और मीठा भी। लेकिन मारिया बिटिया को कुछ अलग तरह की चीज़ खानी थी, इसीलिए हमने उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। अब ये हम तो बताएंगे नहीं कि वो क्या है, और ख़बरदार अगर तूने उस चीज़ को छुआ, पहले मारिया बिटिया का मन है पहले वही खाएगी। अब ये सुनकर रौनक ने मुंह फुला लिया और बोली, ये क्या नानी माँ, मैं भी तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकती हूँ, खट्टी मीठी नाम सुनते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट तो करवाइए। जैसे ही रौनक ने आंखों में अजीब सी चमक लाकर ये कहा, नानी माँ मुस्कुरा दी और बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल तभी राधिका और वंशिका भी अब रौनक के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नानी माँ की बातें सुन ली थीं। अब सभी को ये क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिरकार नानी माँ ने ऐसा क्या बनाया है जो खट्टा और मीठा दोनों है। कद्दू की सब्जी तो नानी माँ ने कहा कि वो नहीं है, तो फिर क्या बनाया है? फिलहाल नानी माँ ने गहरी सांस ली और फटाफट से मारिया को आवाज़ लगाकर बुला लिया। मारिया वहाँ आ गई थी। उसने एक नज़र राधिका, वंशिका और रौनक को देखा और हल्की सी स्माइल पास करने की कोशिश की, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गई। नानी माँ ने जल्दी ही मारिया के लिए प्लेट लगा दी। वहीं रौनक तो सिर्फ अपनी चुलबुली आंखों से यही देखना चाह रही थी कि आखिर नानी माँ ने ऐसा क्या बनाया है जो कुछ अलग और स्वादिष्ट भी है। वसुंधरा को नानी माँ ने अब उसके कमरे में भेज दिया था क्योंकि रौनक ने काम कर करके उसकी कमर की पूरी तरह से बैन बजा दी थी। नानी माँ को उस पर हल्का सा तरस आ गया था और वैसे भी नानी माँ खुद मारिया के लिए डिश बना रही थी, इसीलिए उन्होंने वसुंधरा को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर वसुंधरा गुस्से से इधर उधर बड़बड़ा रही थी, साथ ही साथ कोशिश कर रही थी कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे ये पता चल जाए कि आखिरकार अरमान से उसकी सारी जमीन जायदाद किस तरह से अपने नाम करवानी है। तो इसीलिए वसुंधरा कुछ अलग ही तरह का सोचने लगी। तभी अचानक उसे याद आया था अजीत। अजीत कोई और नहीं बल्कि वीर का सेक्रेटरी हुआ करता था जो उसके सारे काम संभालता था, और किस्मत से उस वक्त वसुंधरा को केवल अजीत का ही नंबर याद था। तब वसुंधरा ने सोचा कि अब जो प्लानिंग वो कर रही है उसमें अगर उसकी कोई मदद कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अजीत। तो इसीलिए वसुंधरा ने अजीत की मदद लेने के बारे में सोच लिया था। वहीं दूसरी ओर अब मारिया तुरंत ही उस डिश की ओर देखने लगी थी जो नानी माँ ने उसके लिए बनाई थी, और तभी उसने देखा कि उसमें से कुछ और नहीं बल्कि पके हुए आम की सब्जी थी। अब ये देखकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर नानी माँ ने पके आम की सब्जी क्यों बनाई है।
रौनक तो पहले से ही आम खाने की शौकीन थी। वो ऑलरेडी कितने भर भर कर आम खाया करती थी, लेकिन आम की सब्जी देखकर उसे कुछ अलग ही लग रहा था। वो चौंकते हुए बोली, नानी माँ, ये क्या आपने पके हुए आम की सब्जी बना दी? क्या ये वाकई इतनी टेस्टी और खट्टी मीठी होती है? आम तो मुझे बहुत पसंद है, आप तो जानती हैं मैं तो 2 दिन में पूरी पेटी खत्म कर देती हूँ। और फिर ये तो पके आम की सब्जी है, नानी माँ प्लीज थोड़ा सा चखवा दीजिए ना। अब नानी माँ ने आंखें दिखाकर रौनक को घूरते हुए कहा, पहले मारिया बिटिया खाएगी, अगर उससे कुछ बचेगा तो मैं तुझे जरूर दूंगी। अब ये सुनकर रौनक ने फिर मुंह फुला लिया। तब नानी माँ उसकी नौटंकी समझते हुए बोली, अच्छा हाँ हाँ मैं समझ गई, तुझे ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, आजा फटाफट से बैठ, मैं तेरे लिए भी लगाती हूँ। और वैसे भी मुझे पता था तू खाने बगैर नहीं मानेगी, इसीलिए मैंने काफी ज्यादा मात्रा में बनाई है। वहीं राधिका और वंशिका ललचाई नजरों से आम की पकी सब्जी को देख रही थीं। वे मन ही मन कहने की कोशिश कर रही थीं कि काश वे भी इसे खा पाती, लेकिन दोनों ही हिम्मत नहीं कर पाईं। नानी माँ ने उनकी आंखें देख ली और बोली, अरे रौनक, अरे वंशिका, राधिका बिटिया, तुम दोनों वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? फटाफट से बैठो, तुम लोग भी ट्राई करो और बताओ कैसी बनी है। अरे हमारे गांव में हमारी जैसी पकी आम की सब्जी हमसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता था। नानी माँ ने जैसे ही शीशी बघारते हुए ये कहा, वो दोनों मुस्कुरा दी। और सच तो ये था कि कहीं ना कहीं वे तो बहाना ही ढूंढ रही थी सब्जी खाने का। फटाफट से वे भी वहीं बैठ गईं। अब नानी माँ ने मुस्कुराकर सब लड़कियों को खाना परोसना शुरू कर दिया।
वहीं मारिया ने एक बाइट खाने के बाद तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगने लगा था मानो उसे उसका मनपसंद मनचाहा खाना मिल चुका है, जिसकी उसे कितने ही दिनों से क्रेविंग थी, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाई थी। अचानक मारिया ने नानी माँ का हाथ पकड़कर कहा, शुक्रिया नानी माँ। अब मारिया की ये आवाज़ सुनकर राधिका, वंशिका और रौनक, जो फटाफट से खाने पर टूट पड़ी थी, तीनों ही खांस पड़ी। तब नानी माँ ने घबराकर तुरंत ही तीनों को पानी का गिलास दिया, क्योंकि मारिया के मुंह से बहुत कम ही आवाज़ निकला करती थी। फिलहाल तभी नानी माँ ने मारिया से कहा, बिटिया, शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम हमें ये कह दो कि तुमने हमें उस बात के लिए माफ़ कर दिया है जब हमने दामाद जी को तुम्हारी गाड़ी चलाने से मना कर दिया था। अब नानी माँ ने जैसे ही मौका देखकर अपनी उस गलती की माफ़ी मांगी, तब मारिया ने उनका हाथ चूम लिया और बिना कुछ कहे थोड़ा सा खाना और खाकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कहीं ना कहीं नानी माँ अभी भी अपने उसी हाथ को देख रही थी जिस पर मारिया ने किस किया था। उन्हें किसी पुराने एहसास की तरह महसूस हो रहा था। फिलहाल तभी नानी माँ ने तीनों लड़कियों को देखते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को कुछ याद भी है कि कल क्या है? अब ये सुनकर तीनों हैरानी से नानी माँ को देखकर बोली, नानी माँ क्या है कल? तब नानी माँ बोली, देखो अब लगातार 2 त्यौहार आ रहे हैं, कल तो भाई बहनों का त्यौहार है, कल राखी है, और उसके ठीक 3 दिनों बाद हमारे कान्हा का जन्मदिन है। जानती हो तुम लोग, हम चाहते हैं कि हम अच्छे से ये दोनों ही त्यौहार मनाएं। कितने दिनों से हमने ढंग से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया, और वैसे भी मेरी आस्था बिटिया भी अब 2 दिन बाद आ रही है, तब तो कान्हा जी के जन्मदिन की खुशी और ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी उसने बताया है कि वो अपने भाई को राखी बांधकर ही आएगी। अब नानी माँ ने जैसे ही ये कहा, वंशिका, राधिका और रौनक, तीनों जो कि उस वक्त नानी माँ की बनाई हुई पके हुए आम की सब्जी को चटकारे लेकर खा रही थीं, उनका हाथ अचानक कहते कहते रुक गया। तीनों की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई थी। नानी माँ उन्हें देखकर बोली, क्या बात है बिटिया, तुम लोग इस तरह से खाना खाते खाते क्यों रुक गईं, और ये नमी कैसी है? तब रौनक, राधिका और वंशिका तीनों ही कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन नानी माँ कहीं ना कहीं समझ चुकी थीं कि क्या बात है। तभी राधिका बोल पड़ी, नानी माँ मैं किसे राखी बांधूंगी, मैं तो अनाथ हूँ। वहीं वंशिका भी बोली, नानी माँ मैं भी अनाथ हूँ। तभी रौनक भी रोते रोते कहने लगी, हाँ नानी माँ, कहने को तो हर एक रिश्ता है मेरे पास, लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो मैं भी अनाथ हूँ। नानी माँ जैसे ही तीनों की आंखों से निकले ये शब्द सुन पाईं, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत ही उन तीनों के सिर पर भारी भारी हथेलियां फेरते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हूँ बिटिया, जब तक हम जिंदा हैं तुम लोग अनाथ तो बिल्कुल भी नहीं हो, और किसने कहा कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? वंशिका बिटिया तुम क्यों परेशान हो, सुमित और आकाश बेटे हैं ना, तुम उन दोनों को राखी बांधना। और राधिका बिटिया शायद तुम भूल रही हो कि दामाद जी ने खुद तुम्हें अपनी बहन बनाया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम तो दामाद जी की छोटी बहन हो, तुम्हें याद है तुम दामाद जी से कितनी ज्यादा घुल मिल गई थी। हाँ हम मानते हैं कि दामाद जी किसी वजह से अपनी यादें खो चुके हैं, लेकिन उनका दिल तो ये बात अच्छी तरह जानता है ना कि तुम लोग उनकी बहन हो। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगी। तब नानी माँ आगे बोली,
हो सकता है बिटिया, अगर तुम दामाद जी को राखी बांधोगी तो उनका दिल तुम लोगों को पहचान ले, और हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन उनकी यादें वापस आ जाएं। तब वंशिका मन ही मन बोली, नानी माँ आप कोशिश तो अच्छी कर रही हैं, लेकिन अरमान भाई को जो वायरस दिया गया है उसका इस तरह के इमोशन से कोई इलाज नहीं होने वाला। लेकिन शायद आपने ठीक कहा, शायद उनका दिल इस बार उनके दिमाग की ना सुने, क्योंकि अब तक तो अरमान भाई का दिल उनके दिमाग के कमांड्स में ही रहा है। तब रौनक बोली, लेकिन नानी माँ आपने देखा नहीं कि अरमान भाई का बदलाव कितना खतरनाक हो चुका है? सच बताऊं तो मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। आपने देखा नहीं, उस वक्त मैं भूल गई थी कि भाई को कुछ याद नहीं है, और उनका बर्ताव कैसा था। ये सुनकर नानी माँ को कहीं ना कहीं अंदर से डर लगने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बिटिया अब हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा तुम लोगों को राखी बंधवाने का। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। और हाँ, बिल्कुल भी तुम लोगों का मायूस होना ठीक नहीं है। हमें पसंद नहीं कि हम अपनी बिटियाओं की आंखों में आंसू देखें। ये बोलकर नानी माँ ने प्यार से उन लोगों को डांट भी दिया। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।